पृष्ठ संख्या 329, अध्याय 22। अध्याय शीर्षक है मानव आत्मा की नियति, पाप मुक्ति तथा मोक्ष एवं मोक्ष के मार्ग या डेस्टिनी ऑफ सोल, सॉल्वेशन एंड मोक्ष एंड इट्स पाथवे। अब शीर्षक है विषय प्रवेश। मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, इसी आध्यात्मिकता के कारण वह जड़ और पशु योनि से भिन्न है। उसे स्वयं का तथा अपने चारों ओर की परिस्थितियों का ज्ञान तथा भूत और वर्तमान की चेतना है। हम कैसे कह सकते हैं कि उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं होगी? सामान्य दैनिक जीवन में ही वह भविष्य की चेतना से घिरा रहता है। आत्मिक सत्ता होने के कारण उसमें वर्तमान के प्रति संतोष तथा भविष्य में पूर्ण होने की आकांक्षा विद्यमान है। वर्तमान से असंतोष के कारण ही सिद्ध होता है कि मानव का जो रूप है वही भविष्य में नहीं रहेगा। वह जो कुछ है उससे आगे जाकर पूर्ण बनना चाहता है। मानव अज्ञानता और अपूर्णता में अनेक प्रकार के कष्टों, अभावों और दुखों की काली भयावनी घटाओं से आच्छन्न है। यदि मनुष्य का यही भाग्य अस्थाई रह जाता तो वह निराशा की किस स्थिति को प्राप्त होता यह कहा नहीं जा सकता, किंतु उसके अंदर पूर्णता और परमानंद की एक स्थिति को प्राप्त करने की अभिप्सा बनी हुई है। इसी अभिप्सा से पता चलता है कि मानव आत्मा को परम शांति की स्थिति प्राप्त होती है। घोर निशा के पश्चात उषा की स्वर्णिम किरणें उसके पथ को आलोकित करेंगी। यही उसकी परम गति और नियति है। यही उसका गंतव्य स्थल है जहाँ से उसे आनंद की प्राप्ति होगी। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। यदि मानव आत्मा का लक्ष्य यह नहीं है तो क्या वह जड़ वस्तुओं की तरह उत्पन्न होगा और विनष्ट हो जाएगा? क्या उसके जीवन का कोई भविष्य नहीं है? निश्चित रूप से मनुष्य जड़ वस्तु नहीं है, आत्मचेतन सत्ता है। उसमें अग्रगामी चेतना है, इसी से उसमें प्रगति है। मानव आत्मा का यह शरीर जिसमें वह अवस्थित है एक दिन अवश्य विनष्ट हो जाएगा, परंतु वह सत्ता मृत नहीं होती। शारीरिक मृत्यु के पश्चात भी उसका भविष्य निर्धारित है। उस आत्मा की यात्रा सतत जारी रहती है। आत्मा के इस भविष्य के विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है कि आत्मा का भविष्य उसी तरह स्पष्ट प्रकाशित है जैसे किसी रंगमंच का दृश्य उस पर पड़ रहे दीपकों के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। उन्हीं के अनुसार जो यह मानते हैं कि शरीर से भिन्न आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, उनके लिए मृत्यु के उपरांत जीवन कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। पृष्ठ संख्या 330। भौतिकवाद के स्थूल और अपरिष्कृत सिद्धांत का जो मृत्यु के बाद जीवन को स्वीकार नहीं करता, आत्मा के आविर्भाव के सिद्धांत के साथ मेल नहीं बैठता। यदि आत्मा शरीर से पैदा नहीं होती, शरीर सिर्फ उसका आविर्भाव करता है तो वह शरीर के नष्ट हो जाने पर नष्ट नहीं होती। इन कथनों से यही स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन का एक भविष्य है और वह उज्ज्वल तथा आशापूर्ण है। अंत में आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त करेगा। अब अगला शीर्षक है, आत्मा की नियति आस्था और तर्क से भी सिद्ध होती है। आत्मा या मानव के भविष्य के संबंध में जो भी चिंतन है वह आस्था और विश्वास का विषय तो है ही, साथ में यह भी कहा जा सकता है कि यह तर्कतः भी सिद्ध होता है। इतना तो निश्चित है कि इस संबंध में धार्मिक अभिवृत्ति या धार्मिक अनुभूति ही इसके प्रमाण हैं। विज्ञान से इसके निष्कर्ष का निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु इसे विज्ञान सम्मत बनाया जा सकता है। विकासवाद या प्रकृतिवाद से मनुष्य के उद्भव और विकास की प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता। प्रकृतिवाद तो यह मानता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अंधविश्वास का फल है। विकास की यह प्रक्रिया मनुष्य को कहाँ ले जाएगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्या प्रकृतिवाद या यांत्रिकवाद की विकासवादी धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि दर्शन तथा धर्म की दृष्टि से ऐसी व्याख्या अर्थहीन सिद्ध होती है। यंत्रवाद क्यों का उत्तर नहीं दे सकता, अर्थात यह विकास क्यों हो रहा है इसका उत्तर उसके पास नहीं है। आत्मिक सत्ता निष्प्रयोजन नहीं है, इनके साथ विश्व में एक प्रगति है, इस प्रगति का एक लक्ष्य है। प्रोफेसर गैलवे ने ठीक ही कहा है कि प्रगति की इस धारणा के लिए न्यायोचित सिद्धांत की आवश्यकता है, और वह है मानव की नियति, एक ऐसे लक्ष्य की धारणा जिसके लिए यह प्रगति हो रही है। मानव नियति को तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि जड़ जगत तो चेतनाहीन है, जब तक इसमें चेतना का उदय नहीं होता तब तक लक्ष्य की कोई बात ही नहीं है। यंत्रवादी या प्रकृतिवादी कार्य कारण के नियम से जगत की व्याख्या करते हैं, परंतु चेतन जगत में प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई लक्ष्य होता है। विकास या प्रगति को देखकर यह प्रश्न उठता है कि वह लक्ष्य क्या है जो इस प्रगति का अंतिम साध्य है, जो इसे आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। बहुत से वैज्ञानिक दार्शनिक तो इस प्रश्न को लेकर घोर निराशा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और उनके अनुसार विकास की सारी प्रक्रिया एक दिन समाप्त हो जाएगी तथा अंत में मृत्यु का राज्य होगा। रसेल ने अपने एक निबंध दी फ्री मैन्स वर्शिप में एक ऐसा ही विश्व के विनाश का चित्र खींचा है। उनके अनुसार विश्व की प्रगति तथा उपलब्धि एक दिन समाप्त हो जाएगी, सभी कुछ मृत्यु और विनाश के गर्त में विलीन हो जाएगा। विज्ञान या वैज्ञानिक चिंतन जड़ जगत के विषय में चिंतन करते करते चेतन जगत को भी ले डूबने का निरर्थक प्रयास करते हैं, जो कि उनके चिंतन क्षेत्र के बाहर है। इस प्रसंग में डॉक्टर राधाकृष्णन का मत आत्मा की नियति को सुनिश्चित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। उनके अनुसार मानवीय आत्मा परमाणु वनस्पति और जीव जंतुओं से भिन्न किस्म की यथार्थ सत्ता है। पृष्ठ संख्या 331। यह एक अधिक सम्मिश्र संरचना है जिसकी एक अलग विशिष्ट प्रकृति है। यह अपने परिवेश के साथ अधिक आंतरिकता और घनिष्ठता से बंधी होती है। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक अतीत जैसे कर्म के साथ सातत्य और दूसरी भविष्य जैसे मुक्ति की ओर सृजनात्मक प्रगति। यह भी अन्य जीवों की भांति अपूर्ण है और निरंतर पूर्णता के लिए आगे की ओर गति करती है। बुद्धियुक्त प्राणियों या उनके विशिष्ट लक्षणों के मूल उद्गम की कोई वैज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध नहीं है। प्रोफेसर गैलवे के शब्दों में फिर हमें यह कहना पड़ेगा और जो तर्कतः सत्य भी है कि यदि मानव का आध्यात्मिक जीवन प्रकृति की उपज नहीं है तो इसकी परम गति या नियति को भौतिक दशाओं द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। निष्कर्षतः पुनः वह कहते हैं कि मानव व्यक्तित्व के महत्व और मूल्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनुष्य शुद्धतः भौतिक सत्ता नहीं है, उसकी नियति पारलौकिक जगत में निहित है। मरण से अमरत्व की ओर गमन ही उसकी नियति है। भारतीय महर्षि श्री अरविंद के अनुसार हम मानव आत्मा की परम गति या नियति के विषय में निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मानव जात का विकास की प्रक्रिया की संकटकालीन स्थिति से गुजर रही है। इसी में उसकी परम गति या डेस्टिनी का चुनाव छिपा हुआ है। सारांश यह है कि मानव आत्मा स्वचेतन है, सप्रयोजन है, इसका एक लक्ष्य है जिसे उसे पाना है। विभिन्न धर्मों में इस लक्ष्य को अनेक नामों से अभिहित किया गया है। हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म में इसे मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। मोक्ष को ही कैवल्य के नाम से कहा गया है। ईसाई धर्म में पाप से मुक्ति या साल्वेशन ही परम लक्ष्य माना गया है। पाप से मुक्त होकर दैवी साम्राज्य का सदस्य हुआ जा सकता है। जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्ग भी बताए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। अब अगला शीर्षक है पाप से मुक्ति या साल्वेशन और इसके मार्ग। ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया, मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी, उसको ऐसा विवेक दिया जिसके आधार पर वह भले बुरे का ज्ञान कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह बुराई का त्याग करके भलाई का कार्य करे। मनुष्य भला तभी हो सकता है जब वह ईश्वर को समर्पित हो जाए, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के अधीन कर दे, ईश्वर के आदेशों का पालन करे। परंतु जब मनुष्य ने दुराचार से अपने को कलंकित कर लिया तो उसकी ईश्वर छवि विकृत हो गई। ईसाई धर्म के अनुसार मनुष्य को इस पाप से मुक्त होना है। इस पाप वृत्ति से मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर की छवि को प्राप्त कर सकता है। यही पाप बंधन का कारण है। संत पाल कहते हैं, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। संत पाल के कथन से यही सिद्ध होता है कि पाप के कारण ही बंधन है, इससे छुटकारा ही मुक्ति या साल्वेशन है। इस मुक्ति के उपायों पर ईसाई धर्म में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। पृष्ठ संख्या 332। हिंदू धर्म की तरह ईसाई धर्म में भी यह स्वीकार किया गया है कि आत्मिक जीवन जीना ही मुक्ति है, शरीर में जीना पाप में जीना है। संत पाल कहते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ईसा मसीह ही जीवन है, उनका निवास जिसमें है वही जीवित है, अर्थात मुक्त है, उसे शांति है। कितना भी पाप हो, यदि ईसा की शरण में जाए तो वह शांति देंगे, क्षमा करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। संत पाल के उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति के विभिन्न उपाय और मार्ग हैं जिन पर चलकर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसमें पहला बिंदु है विश्वास। ईसाई धर्म में मुक्ति के लिए पहला मार्ग है कि मनुष्य ईसा मसीह में विश्वास करे, यही उद्धार करता है। उनके उपदेशों में विश्वास करना मनुष्य का कर्तव्य है। स्वयं ईसा ने कहा भी है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। अब बिंदु दूसरा है ईश्वर कृपा, क्षमा एवं हृदय की पवित्रता। ईसाई धर्म में मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। ईश्वर के समक्ष बाल कवत सरल बनकर जाने से क्षमा किया जाएगा। ईश्वर की कृपा उसी पर होगी जिसका विश्वास ईसा में, उनके उपदेशों में है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो नम्र है, जो आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, वे ही क्षमा के पात्र हैं। ईसा मसीह कहते हैं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं फिरो। और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि ईसाई धर्म में जहां मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहना आवश्यक बतलाया गया है, वहां हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म में मनुष्य का प्रयास अधिक आवश्यक है। परंतु डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि ईसाई धर्म में भी मनुष्य के प्रयास और उसके कर्मों के आधार पर ही मुक्ति निर्भर है। उनके शब्दों में ईसा को भी मान्य है कि अध्यात्म जगत के भी नियम हैं। तुच्छ तृण, चोर, गुप्त धन, मोती पथ भ्रष्ट पेड़, मुद्रा, 10 कुमारियों एवं वैवाहिक वस्त्रों की दृष्टांत कथाओं का यही संकेत है कि हमारी मुक्ति अपने ही कर्मों से हो सकती है। अब बिंदु तीसरा है नैतिक आचरण। ईसाई धर्म में मुक्ति के मार्ग के रूप में नैतिक आचरण की शुद्धता पर भी बल दिया गया है, क्योंकि मानव का भावी जीवन वर्तमान के कर्मों पर निर्भर होता है। वही व्यक्ति दैवी साम्राज्य का अधिकारी होगा जिसका नैतिक आचरण शुद्ध रहा है, अर्थात जिसने नैतिक जीवन व्यतीत किया है तथा बुरे आचरण के लिए ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना की है। पाप से क्षमा होने पर ही उसे मुक्ति मिलेगी। इसी से यह भी प्रकट होता है कि ईसाई धर्म वैयक्तिक अमरता में विश्वास करता है। अन्य धर्मों की अपेक्षा ईसाई धर्म नैतिकता पर इतना अधिक बल देता है कि व्यवहारिक दृष्टि से कुछ लोग इसे संभव नहीं मानते, परंतु इतना सत्य है कि मानव जीवन के लिए नैतिकता का अतिवादी रूप बहुत चौंकाने वाला भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता का प्रश्न पशु जीवन के लिए नहीं मनुष्य के लिए ही उठाया जा सकता है। ईसा का यह उपदेश मनुष्य को ही दिया जा सकता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पृष्ठ संख्या 333। सारांश यह है कि ईसाई धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम उद्देश्य पाप से मुक्त होना और वैयक्तिक अमरता को प्राप्त करना है, परंतु इनकी अमरत्व की धारणा हिंदू धर्म में वेदांत की धारणा से भिन्न है। वेदांत में तो ब्रह्म और जीव में एकाकारता हो जाती है, परंतु ईसाई धर्म में एकाकारता नहीं होती। इस धर्म में मनुष्य ईश्वरत्व को नहीं प्राप्त करता, वरन वह ईश्वर से अलग अपनी सत्ता बनाए रखता है। अब अगला शीर्षक है समीक्षा। ईसाई धर्म के अनुसार पाप से निवृत्त होने के बाद ही मुक्ति संभव है। ईश्वर के प्रतिरूप में मनुष्य ने झूठे और अनित्य रूप को चाहा तथा अपने सच्चे रूप अर्थात ईश्वर से दूर भागता रहा। पाप का उदय हो गया, परंतु मनुष्य में ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, उसका वह उपयोग कर सकता है, परंतु स्वभावतः पापी नहीं है। वह अपनी परम गति को प्राप्त कर सकता है, उस पर उसका अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ समय के लिए टल जरूर सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है कि वह सिद्धांत जो मनुष्य को स्वभावतः पापी समझता है, मुझे भय है सत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। हमारी प्रकृति तो दैवी है। जो पुरुष संसार में आता है वह ईश्वरीय ज्योति से युक्त रहता है। यदि मैं तुम में न होता तो तुम हमारी खोज नहीं कर सकते थे। इस दृष्टि से पाप वृत्ति त्याग किसी नवीन वृत्ति का आविर्भाव नहीं है। मुक्ति अपने भीतर के देवत्व के क्रमिक विकास का परिणाम है, ईश्वरीय करुणा का फल नहीं। इस प्रकार यदि ईसाई धर्म में पाप पर अधिक बल न दिया जाए तो मुक्त आत्मा के लक्षण हिंदू और ईसाई मत में समान ही हैं। मुक्ति का फल ज्ञान, प्रेम तथा आनंद है। मुक्त पुरुष के पास केवल ज्ञान तथा प्रेम ही नहीं होता, वरन उसके पास तो वह शांति भी होती है जो मनुष्यों एवं परिस्थितियों की शक्ति से परे होती है और जिसका वर्णन हिंदू किया करते हैं। वहीं वह आनंद है जिसकी ओर ईसा ने संकेत किया था जब उन्होंने कहा था, अपना आनंद मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई नहीं छीनता। इस प्रकार ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के मुक्ति के सिद्धांत में पर्याप्त साम्य है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने दो बातों पर विशेष बल दिया है। एक है अपने त्याग से दूसरों के पापों का प्रायश्चित करने का सिद्धांत और दूसरा ईसा के बलिदान के फलस्वरूप ईश्वर द्वारा मनुष्यों को फिर से अपना लेने का सिद्धांत। उनका कहना है कि यदि इन दो बातों में विश्वास न करे तो हिंदू और ईसाई धर्म में मुक्ति के स्वरूप तथा साधन के संबंध में भेद नहीं रह जाता। उनका कहना है कि यह बात निर्विवाद है कि सभी साधुओं की तरह ईसा भी किसी हद तक हमें पापों से बचाकर ईश्वर की ओर ले जाता है, किंतु ईसा का बलिदान लोगों के पापों का प्रायश्चित करे, यह अनर्गल बात है।